बारहवें अध्याय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल हमने इसके प्रथम पांच श्लोकों पर चिंतन किया और भक्ति योग यह जो नाम दिया गया है, इस नाम की व्याख्या को समझने का प्रयास किया। अर्जुन ज्ञान के प्रति अधिक अनुरक्त दिखाई देता है। इसका कारण यह नहीं है कि वह ज्ञान का प्रेमी है, बल्कि कारण यह है कि वह कर्म से दूर होना चाहता है। युद्ध रूपी कर्म से, जिसे वह घोर कर्म कहकर के पुकारता है। यहां पर बारहवें अध्याय में उसने भक्ति के जानने वाले को और ज्ञान मार्ग के जानने वालों को, ऐसे दोनों को रखा और यह पूछा कि इन दोनों में श्रेष्ठ जानकार कौन है। भगवान कृष्ण उसका उत्तर उसी प्रकार देते हैं जिस प्रकार से अर्जुन को भक्ति की महिमा ही अधिक गरीय मालूम पड़े, इसलिए उन्होंने यह कहा कि जो लोग अपने मन को मुझ में आविष्ट कर देते हैं, नित्य युक्त हैं मेरे साथ और परम श्रद्धा से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को सबसे श्रेष्ठ जुड़ने वाला मानता हूं। फिर जो ज्ञान योगी हैं उनके बारे में भी उन्होंने यहां पर चर्चा की और यह कहा कि ऐसे ज्ञान के रास्ते से चलने वाले ये भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। यहां पर जो भगवान श्री कृष्ण मैं और मेरे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, यह ब्रह्म भाव से मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मुझ ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त होते हैं। तो यहां पर चौथे श्लोक में तीन जो शब्द हैं उन पर हम कल चर्चा कर रहे थे। संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः और सर्वभूत हिते रताः। ज्ञान के रास्ते से चलने वाले जो व्यक्ति हैं उनमें ये तीन गुण होने चाहिए। संयम्य इंद्रिय ग्रामम, अपनी समूची इंद्रियों पर उनका नियमन होना चाहिए। सर्वत्र समबुद्धयः, समान बुद्धि जिनकी रहे सर्वत्र, और सर्वभूत के हित में वे रत रहें। ऐसे जो लोग हैं अक्षर की उपासना करने वाले, ये भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब ये जो तीन गुण हैं, ये तीन गुण तो भक्तों पर भी लागू होते हैं। भक्त भी अपनी इंद्रियों को वश में करता है, भक्त भी सर्वत्र समबुद्धि रखता है, क्योंकि वह अपने प्रियतम को ही सबके भीतर में विराजित देखता है। यह भक्त की दृष्टि है। वही भगवान सबके भीतर में विराज रहे हैं जो उस भक्त के इष्ट है, इसलिए वह सर्वत्र अपने प्रियतम का ही दर्शन करता है। सर्वभूत ही तरत, स्वाभाविक ही सभी के प्रति उसकी हित भावना होती है। तो सर्वभूत हित रत का तात्पर्य यह नहीं कि हम सभी के कल्याण का बीड़ा उठा लें। इसका मतलब यह है कि सबके लिए कल्याण की कामना उसके हृदय में रहती है, किसी के प्रति उसकी द्वेष बुद्धि नहीं है, किसी का अहित वह नहीं चाहता है। बस इतना ही तात्पर्य यहां पर लेना चाहिए। सबके हित का इच्छुक है क्योंकि वह अपने आप को ही सबके भीतर में अवस्थित देखता है, यह ज्ञान की दृष्टि है। ज्ञानी अपने आप को सब में व्याप्त देखता है, और जो भक्त है वह अपने प्रियतम को, परमेश्वर को, ईश्वर को, इष्ट को सबके भीतर में व्याप्त देखता है। ये दो दृष्टियां हैं, एक ज्ञान की और एक भक्ति की। अब यहां पर कहते हैं पांचवें श्लोक में, क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, जो यह अव्यक्त का रास्ता लेकर के चलने वाले ज्ञान मार्गी, उसमें क्लेश अधिक है, क्योंकि जो देह बोध वाला व्यक्ति है देहाभिमानी, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते, कि अव्यक्त की जो गति है देहाभिमानी को बहुत कठिनाई से यह गति मिलती है। इसका मतलब नहीं मिलती, देह बोध जब तक हमारा बना हुआ है तब तक आत्मा में हमारी गति हो ही नहीं पाती है, और इसीलिए इस रास्ते पर चलना हमारे लिए कठिन होता है। यह जो निर्गुण निराकार का रास्ता और सगुण साकार का रास्ता, भक्ति माने सगुण साकार की उपासना, निर्गुण माने निर्गुण यह जो, और ज्ञान माने निर्गुण निराकार का चिंतन और ध्यान, ये दो रास्ते हो गए। तो जो निर्गुण निराकार के रास्ते जाता है, ज्ञान के रास्ते चलना चाहता है, उसके जीवन में विवेक और वैराग्य होना चाहिए, और जो भक्ति के रास्ते चलता है उसके जीवन में श्रद्धा होनी चाहिए। इसीलिए भक्त के लिए कहा है श्रद्धा, श्रद्धया परया, पराश्रद्धा से जो युक्त है, तो भक्ति में पराश्रद्धा आवश्यक है, और ज्ञान के रास्ते चलने के लिए विवेक और वैराग्य आवश्यक है। अब विवेक का मतलब आप जानते हैं, नित्य और अनित्य का विवेक, यह नित्य है वह अनित्य है, कितना कठिन है। मानो यह विवेक देह बोध वाले के लिए, हम जो देहाभिमानी हैं, सत और असत का निर्णय करना, नित्य और अनित्य का निर्णय करना, विवेक करना, यह हमारे लिए कितना कठिन है। और विवेक करने के पश्चात वैराग्य अपने भीतर में प्रज्वलित करना, यह और भी कठिन बात है। संसार में जहां पर सब कुछ हमारे लिए आकर्षक मालूम पड़ता है, वहां इंद्रियों के आकर्षण से अपने को पूरी तरह मुक्त करके विचार और विवेक के बल पर, वैराग्य के बल पर आत्मा की स्थिति में जाने की चेष्टा करना, देह मन और इंद्रियों को पार करके, यह बहुत कठिन साधना है। तो इसीलिए यहां पर यह कहा कि जो देहाभिमानी व्यक्ति है उसके लिए ज्ञान का रास्ता बड़ा कठिन है अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण प्रकारांतर से यह भी कह देना चाहते हैं, अर्जुन तू तो देहाभिमानी है, तेरा देहाभिमान छूटा नहीं है, और इसलिए यदि तू ज्ञान के रास्ते पर चलने की इच्छा करता होगा उस इच्छा को तू छोड़ दे, क्योंकि तेरी पात्रता उस रास्ते पर चलने की नहीं है। यह इसका निहित तात्पर्य है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और फिर इसके बाद पुनः भक्त की प्रशंसा करते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मई सन्यस्य मत्पराः अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्तो उपासते तेषाम अहम् समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। यह छठा और सातवां श्लोक जहां पर यह कहा गया, परंतु, परंतु का मतलब अभी उन्होंने ज्ञान मार्ग की चर्चा की। पांचवें श्लोक में कहा कि इस रास्ते में क्लेश बहुत अधिक है देहाभिमानी के लिए, इसके बाद कहते हैं परंतु ये तो सर्वाणि कर्माणि मई सन्यस्य, ये सर्वाणि कर्माणि मई सन्यस्य मत्पराः और अनन्य नैव योगेन, अनन्य योग के द्वारा, और अनन्य योग ही के द्वारा, अनन्य एव माने एव शब्द लगाया कि अनन्यता के ही द्वारा, अनन्य योग के द्वारा माम ध्यायन्ते उपासते, मेरा ध्यान करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, तेषाम अहम् समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, उनके लिए मैं ही समुद्धरता बनता हूं मृत्यु संसार सागर से, भवामि नचिरात् पार्थ मैयावेशित चेतसाम, ऐसे जो लोग हैं जिनका चित्त मुझ में आविष्ट हो गया है तो उनके लिए मैं ही मृत्यु संसार से पार करने के लिए नौका स्वरूप बन जाता हूं। मानो भगवान ही आकर के पार कर देते हैं ऐसे भक्तों को, यह कितना लुभावना आकर्षण है। जो भगवान यहां पर देते हैं वे अपने किसी दूत को नहीं भेजते कि जाओ वह मेरा भक्त है, उसको तुम मृत्यु संसार सागर के पार ले आओ, मेरे पास ले आओ, बल्कि स्वयं भगवान ही आते हैं उसका उद्धार करने के लिए। वे मानो नौका स्वरूप स्वयं बन जाते हैं। तो यहां पर यह कहा भक्ति की विशेषता बताते हुए, ये तो सर्वाणी कर्माणि मई सन्यस्य, यह पहला गुण कि सब कर्मों का मुझमें सन्यास करके, मत पराह मेरे परायण हो करके, अनन्य नैव योगेन अनन्य योग के ही द्वारा, माम ध्यायन्तो उपासते मेरा ध्यान करते हैं मेरी उपासना करते हैं, उनके लिए मैं मृत्यु संसार को पार करा देने वाला ऐसा बन जाता हूं, मैं स्वयं नौका स्वरूप हो जाता हूं। तो यहां पर ऐसे भक्तों के लिए तीन विशेषण दिए। पहला तो कहा कि सब कर्मों का सन्यास मुझमें कर दो। कैसे कर दें? कर्मों का सन्यास प्रभु में कैसे किया जा सकता है? जो हमारे इष्ट हैं उनमें हम कर्मों का सन्यास कैसे करें? ऐसे किया जा सकता है कि अपने इष्ट को अपनी समस्त क्रियाओं का केंद्र बनाया जा सकता है। कहते सन्यस्त कर दो, कर्मों का सन्यास कर दो, कर्मों को छोड़ दो मुझमें। तो भगवान में कर्मों को कैसे छोड़ें? ये कर्म तो ऐसी कोई वस्तु तो है नहीं कि जिनको हम पकड़ करके उठा लें और भगवान के पास जाकर के छोड़ दें, ऐसा तो है नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि हम जो भी क्रिया करते हैं उस क्रिया के केंद्र में हम अपने इष्ट को बिठा लें कि प्रभु ही मानो इस क्रिया के कर्ता हैं और वे ही इस कर्म के फल के भोक्ता हैं, वे मेरे माध्यम से क्रिया करा ले रहे हैं, मैं यंत्र हूं वे यंत्री हैं। जैसे एक बंगला में बहुत प्रसिद्ध भजन है जो आप लोग सुनते हैं कि माँ है और माँ ही सब कुछ कराती है, मैं यंत्र हूं तुम यंत्री हो, वह भाव है गीत का, मैं घर हूं तुम घरणी हो, जैसा तुम चलाती हो वैसा मैं चलता हूं, सभी तुम्हारी इच्छा है तारामयी, वह जो कहा गया है तारा सभी तुम्हारी, तुम इच्छा मई हो, तुम जैसा चलाती हो वैसा मैं चलता हूं। तो यहां पर यही भाव, अपने को यदि मैं यंत्र मान सकूं प्रभु के हाथों में तो मेरी समस्त क्रियाओं के केंद्र वे ही हो जाते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं रामचरितमानस में भरत जी से एक प्रश्न पूछा गया, आप तो कहते हैं आप प्रभु के इशारे पर नाचते हैं, प्रभु श्री राम के संकेत पर आप क्रिया करते हैं, वे ही सब कुछ हैं, पर आप जो प्रभु के इशारे पर नाचते हैं तो किस प्रकार के नाचते हैं? भरत जी ने पूछा तुम्हारे प्रश्न का तात्पर्य क्या? तो इसके उत्तर में प्रश्न करने वाले व्यक्ति ने कहा कि देखिए प्रभु तो दो प्रकार से नचाया करते हैं, एक तो यह है नट मरकट इव सब ही नचावत, जैसे मदारी बंदर को नचाता है, और दूसरा है उमा दारू जोशित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। कह रहे हैं भगवान शंकर उमा से, सुनो उमा स्वामी राम कैसे हैं, सभी को नचाते हैं कठपुतली के समान। तो श्री राम दो प्रकार से नचाते हैं, एक तो नचाते हैं नट मरकट इव सब ही नचावत, मदारी जैसे बंदर को नचाता है, और दूसरा नचाने का तरीका है जैसे सूत्रधार कठपुतली को नचाता है। तो भरत जी से पूछा गया आप जब कहते हैं कि प्रभु के संकेत पर आप नाचते हैं तो आप अपने को किस प्रकार का नाचने वाला मानते हैं? भरत जी ने तुरंत उत्तर देते हुए कहा मैं अपने को कठपुतली के समान नाचने वाला मानता हूं। क्या मतलब है? उन्होंने बंदर के समान नाचने वाला क्यों नहीं माना? आप जानते हैं विशेषता, बंदर नाचता है और नाच रहा है, आप उसका नाच देख करके प्रसन्न होते हैं, पर बंदर नृत्य करता है नाचते नाचते थक जाता है और बंदर उतना ही नाचता है जितना उसने सीखा है। और इसके बाद बंदर का नाच आप देख करके प्रसन्न हुए, आप उसे कुछ देते हैं, पैसा निकाल करके आपने दिया, तो बंदर अपने हाथ से नोट ग्रहण करेगा और आपको सलामी ठोकेगा। यह आप देखते हैं। कठपुतली के नाच के साथ क्या है, कठपुतली भी नाचती है पर कठपुतली कभी नहीं थकती, नचाने वाला थकता है। और कठपुतली कितनी भी नाचे, जितना नचाने वाला नचाएगा कठपुतली नाचती रहती है, कठपुतली कभी नहीं थकती, नचाने वाला थकता है। और कठपुतली का नृत्य देख करके आप खुश हो गए तो आप कठपुतली को पैसा नहीं पकड़ाएंगे, आप सूत्रधार को पैसा देंगे, कहेंगे वाह भाई तुमने क्या बढ़िया कठपुतली का नाच दिखाया। तो यह जो अंतर है, इस अंतर में भरत जी का जो भाव है वह भाव ग्रहणी है। भरत जी कहते हैं मैं तो कठपुतली के समान, सारा श्रेय प्रभु को है। बंदर श्रेय ले सकता है नाचने का और इसलिए वह थकता भी है, परंतु कठपुतली को नाचने का श्रेय नहीं है, वह तो सूत्रधार को नचाने का श्रेय है। तो इसी प्रकार भरत जी मानते हैं कि प्रभु श्री राम सूत्रधार, मैं उनके हाथ में कठपुतली यंत्र, जैसा वे चलाते हैं वैसा मैं चलता हूं। तो यहां जो कहा गया सर्वाणि कर्माणि मई संन्यस्य, समस्त कर्मों का संन्यास मुझमें कर दे जो भक्त, इसका मतलब कि अपने को कठपुतली माने प्रभु के हाथों में, यह भक्त का समर्पण भाव है कि प्रभु ही मुझे नचाते हैं, वे जैसा चाहें मुझसे काम करा लें, मुझसे क्रिया करा लें। तो यह भाव साधना की स्थिति में, और जब सिद्धि की स्थिति आती है तो यही भाव परिपक्व हो जाता है। साधना और सिद्धि में यही अंतर है, एक भाव लेकर के चलते हैं वही भाव सिद्धि में ही रहता है, पर तब वह भाव परिपक्व हो गया। साधना की अवस्था में कभी वह भाव रहता है कभी छूट जाता है, कभी रहता है कभी छूट जाता है, अभी रहेगा थोड़ी देर बाद छूट जाएगा, पर जब वह परिपक्व अवस्था में जात भाव सतत बना रहता है। तो यहां पर भक्त के लिए कहा कि वह सारे कर्मों का संन्यास मुझ में करता है, मानो कर्मों का कर्तापन अपने ऊपर लेता नहीं है, मुझ पर डाल देता है। यह एक, और मत पराह मेरे ही परायण है, संसार में वह और दूसरे किसी के परायण नहीं होता, वह केवल मुझे ही चाहता है, मैं ही उसके लिए श्रेष्ठ तत्व हूं या श्रेष्ठ व्यक्ति हूं, मुझसे बढ़कर के और किसी को नहीं मानता यह भक्त। और तीसरा अनन्य नैव योगेन, अनन्य योग ही के द्वारा मेरा चिंतन करता है, ध्यान करता है, उपासना करता है। ध्यान हम करते हैं, मन में ध्यान करते हैं, चित्त में ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं। तो उपासना का तात्पर्य कल भी कहा था, पास बैठना, समीप बैठना, यह भाव है। और उपासना यदि दूसरे ढंग से देखना चाहे तो वह इंद्रियों के द्वारा संपन्न होने वाली, तो हम इंद्रियों के द्वारा उपासना करते हैं, मन के द्वारा ध्यान करते हैं। तो अंतःकरण के द्वारा ध्यान, और ये जो इंद्रियां हमारी हैं उनके द्वारा हम उपासना। तो ये कहते हैं कि ये अपने अंतःकरण से मेरा ध्यान करते हैं ये भक्त, और अपने ये जो अपनी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के माध्यम से उपासना करते हैं। और कैसे करते हैं, अनन्य योग के द्वारा। यह अनन्य योग क्या है, जहां पर ईश्वर को छोड़कर के हम दूसरा अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते। ईश्वर है इसलिए सब कुछ अच्छा लगता है भक्त को, ईश्वर नहीं है इसलिए कुछ भी नहीं अच्छा लगता। जैसे एक कथा आती है, एक मेले में गरीब विधवा स्त्री अपने बच्चे को लेकर के जाती है मेला दिखाने के लिए, अपने बेटे को बहुत आग्रह कर रहा था वह लड़का, मां तुम भी चलो मेला दिखा दो। अब मेले में कितनी चीजें हैं, पास में पैसा तो नहीं है उस स्त्री के, लड़का कहता है मां तुम यह मुझे खरीद दो, मां कहती चल बेटा यहां पर उतना अच्छा नहीं है खिलौना, चल उधर हम लोग देखेंगे, उधर खिलौने वाले अच्छे अच्छे बैठे हैं उधर से खरीद देंगे। किसी प्रकार बहलाना चाहती है अपने लड़के को। थोड़ी दूर जाने पर लड़के ने पुनः कहा मां तू यह मेरे लिए खरीद देना, मां ने फिर से इसी प्रकार बहलाने की चेष्टा की, बेटा अभी तो हम लोगों ने मेला देखना शुरू ही किया है, चल एक से एक उधर बढ़िया मिलेगा, उधर मैं खरीद दूंगी। किसी भी प्रकार लड़का बहल जाए, पैसा तो है नहीं। एक धनिक व्यक्ति पीछे पीछे आ रहा था, उसे सुन करके अच्छा भी लगा कि देखो यह भी है, माँ खरीदना भी चाहती है पर पैसा नहीं है। लड़का कह भी रहा है, इच्छा भी होती है कि ठीक है मैं दे दूं या लड़के के लिए खरीद दो, यह इच्छा भी हो रही है। अचानक इतने में भीड़ का एक रेला आता है और ऐसा जोरों का रेला आया कि वह लड़का छिटक गया, माँ कहीं दूसरी तरफ चली गई और यह जो व्यक्ति था पीछे पीछे आ रहा था वह उधर ही गया जिधर वह छोटा सा लड़का भी गया। और लड़का तो रो रहा है, माँ के पास जाऊंगा। कोई पूछता भी है तो बता नहीं पाता कि माँ का क्या नाम है। अब यह जो व्यक्ति था वह चुप कराने के लिए उस लड़के के पास गया और वह कहने लगा कि देख बेटे, तुझे वह खिलौना पसंद है ना, चल मैं तुझे खिलौना ले देता हूं। लड़का कहता है नहीं, मैं माँ के पास जाऊंगा, मुझे माँ चाहिए। तरह तरह से उससे कहने की कोशिश की कि तुझे वह पसंद था, तेरी माँ ने नहीं खरीदा, चल मैं ले देता हूं, खाने की चीज ले देता हूं। पर उस लड़के को सब अलोना लगता है, वह केवल माँ को ही चाहता है। मैं माँ को चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब तक माँ नहीं मिलती तब तक वह रोता है। अब माँ है तो उसको खिलौना भी चाहिए, खाने की चीज भी चाहिए, पर माँ नहीं है तो उसे किसी में रुचि नहीं है। यही अनन्य का भाव है। ईश्वर यदि मेरे साथ हैं तब तो संसार में ठीक है, जो भी चीज है अच्छी है, पर ईश्वर यदि नहीं है तो कोई भी चीज मेरे लिए ठीक नहीं है, सभी मेरे लिए अलोने हो जाते हों, ऐसा भाव अनन्य कहलाता है। यहां पर वही कहा गया कि अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्ते उपासते, मेरा वे ध्यान करते हैं ये भक्त, मेरी उपासना करते हैं अनन्य भाव से कि मैं हूं इसलिए सब कुछ अच्छा लगता है और वे न हूं कुछ भी अच्छा नहीं लगता। काकभुशुंडी जी जब प्रभु श्री राम के दर्शन करने जाते हैं, जब प्रभु छोटे से बालक हैं, वह हम पढ़ते हैं तो वहां पर जो एक कौतुक होता है, तो वहां पर जैसे पीताम्बर वस्त्रधारी हैं प्रभु, तो पीत झीन झीन जहां पर कहा गया है कि झीने कपड़े का वह जो पीताम्बर हो, कहा काकभूषण जी ने कि प्रभु मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं, पर कैसे दर्शन करना चाहता हूं, झीने पीत रंग की झगुली हो, झीन पीत झगुली तन सोही किलकन चितवन भावती मोही, कि आप झीने पीले रंग की झगुली पहने हो। तो इसका मतलब क्या है कि पीले रंग की झगुली वह एक प्रसंग बड़ा सुंदर और मधुर प्रसंग है। तो काकभूषण जी तो भक्त हैं, भगवान शंकर हैं ज्ञानी। ऐसा आता है कि भगवान शंकर भी दर्शन के लिए आए, प्रभु उस समय मड़ैया ले रहे हैं, वही उम्र होगी अभी 6-7 मास की। पहले तो भगवान शंकर और काकभूषुंड जी दोनों एक साथ जाने वाले थे प्रभु के दर्शनों के लिए, पर विलंब हो गया। काकभूषुंड जी को आने में काकभूषुंड जी ने कहा शंकर जी से कि महाराज मेरे आने में विलंब हो सकता है, मैं वस्तुतः एक जगह अटक गया हूं, यदि मैं समय पर आ जाऊं तो आपके साथ चलूंगा, नहीं तो आप दर्शन कर लीजिएगा। शंकर जी जाते हैं, उनको तो कोई देख नहीं सकता, वे देखते हैं प्रभु वहां पर आंगन में मड़ैया ले रहे हैं। शंकर जी आए, प्रणाम किया और नेत्रों ही नेत्रों में प्रभु ने हंसते हुए पूछा, शंकर जी आपने नाटक लिखा। हम लोग पढ़ते हैं कि भगवान शंकर ने यह नाटक लिखा, जिस नाटक का खेल भगवान श्री राम कर रहे हैं, यह जो रामायण नाम है रामचरित मानस, हम पढ़ते हैं रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमो शिवासन भाखा, ताते रामचरित मानस बर धरेव नाम ही हेरी हरसी हर। नाम की व्याख्या करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रचि महेश निज मानस राखा, रच करके भगवान शंकर ने अपने मानस में रख लिया, समय पाकर के उन्होंने शिवा को सुनाया, पार्वती जी को सुनाया, ताते रामचरित मानस बर, इसीलिए उसको रामचरित मानस कहते हैं, जो रामचरित भगवान शंकर के मानस में उपजा। तो ऐसी प्रथा है कि भगवान शंकर ने पहले ही रामचरित मानस लिख लिया था या लिख लिया था अपने मन में और उसको सुनाया था दो श्रोताओं को, एक श्रोता तो उमा जी थी और दूसरी श्रोता यहां पर कहा गया है के दूसरे श्रोता थे ये काकभुसुंड, सोई शिव काक भुसुंड ही दीन्हा राम भगति अधिकारी चीन्हा, कि भगवान शंकर ने राम कथा अपने मन में लिखी और दो लोगों को सुनाया, एक तो उमा और दूसरे थे काकभुसुंडी। सुनाते हैं। अब यह तो बात समझ में आती है कि कोई व्यक्ति जन्म ले, क्रियाकलाप करे तो उसका चरित्र लिखा जाए, यह ठीक है। पर अभी व्यक्ति ने जन्म ही नहीं लिया और उसका चरित्र लिख लिया गया, पहले लिख लिया गया और बाद में उसके अनुसार किया जा रहा है, तो ऐसा कभी संभव है क्या? तो गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत देते हैं कि ऐसा संभव है, और वह संभव है नाटक में। जब नाटक कोई करता है तो पहले लिखा जाता है, बाद में खेला जाता है, तो उनका संकेत यह है कि प्रभु श्री राम नाटक कर रहे हैं। नाटक को ही हम कहते हैं लीला, यह प्रभु की लीला है। तो यह जो कर रहे हैं यह प्रभु की लीला है। तो भगवान शंकर ने नाटक लिखा, उस नाटक को खेलते हैं भगवान श्री राम, मानो यह श्री राम की लीला। तो ठीक है, शंकर जी दर्शनों के लिए गए तो प्रभु ने नेत्रों ही नेत्रों में संकेत से पूछा, शंकर जी नाटक आपने लिखा, खेल में रहा हूं, सब ठीक तो है, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है? शंकर जी ने कहा, महाराज आप नाटक खेलें, आप अभिनेता हो, कहीं कोई त्रुटि हो सकती है? नहीं, देख लीजिए, कहीं कोई मीन मेक हो, किसी प्रकार की न्यूनता हो बता दीजिए, दूर कर देंगे। कहा, महाराज कोई न्यूनता नहीं, किसी प्रकार का मीन मेक नहीं। नहीं तो ठीक है ना, आपने नाटक में जैसा लिखा कि आप जब मेरे दर्शनों के लिए आएंगे मेरे पास तो ठीक ऐसा ही सब रहेगा, आपने नाटक में यही लिखा है? शंकर जी ने कहा कि महाराज जब आप इतना खोद करके पूछ ही रहे हैं, वैसे तो सब ठीक है, यह आपने जो झगुली पहनी है इसका रंग अलग है। नाटक में लिखा है मैंने, प्रीत झगुलिया तनु पहराई, आपके शरीर पर पीले रंग की झगुली होगी, बस इतना ही अंतर है। प्रभु ने कहा, यह अंतर भी क्यों रहे, वे रुदन करते हैं, माँ आती। अब प्रभु ने संकेत से माँ को चलने के लिए कहा, जहां पर उनके कपड़े रखे हैं। माँ को लगा कि क्या हो गया, अभी तो मैंने कपड़ा बदला है। पर संकेत करते हैं, माने कपड़ा निकाला जाता है, जब पीले रंग की झगली आती है तो प्रभु संकेत से कहते हैं, या मुझे पहनाओ। माँ ने पहले की झगली निकाल दी, पीले रंग की झगली पहना दी, और प्रभु फिर तो वहां से माँ की गोद से मचल करके नीचे आते हैं और आए आंगन में। शंकर जी से कहा, अब तो ठीक, नाटक में कोई खामी तो नहीं, त्रुटि तो नहीं? शंकर जी तो भाव नेत्रों से देख रहे हैं, नेत्र छलछला आते हैं, महाराज कोई खामी नहीं, पीत झगुलिया तनु पहराई, जानु पानी बिचरनी मोहि भाई, बस यही एक इच्छा है, आप घुटनों के बल हाथों के सहारे थोड़ा मड़ैया लेकर के दिखा दें। और प्रभु मड़ैया लेते हैं, जाते हैं आंगन के एक छोर से दूसरे छोर तक, पुनः जाते हैं, शंकर जी की ओर देखते हैं ताकि शंकर जी कहें कि बस बस, घुटनों में भी पीड़ा हो रही है, अंत में उन्हें कहना ही पड़ा, खो गया ना। और शंकर जी वहां से विदा लेते हैं। या एक फिर भागते भागते काकभूषण जी आए, रास्ते में शंकर जी मिले, काकभूषण जी मैं तो दर्शन करके आ गया, तुम तो नहीं आ पाए, जाओ तुम भी कर लो। भूषुंड जी आते हैं, कौवे हैं, आकर के वे चरणों में प्रणाम करते हैं, अब कौवा तो कहीं भी जा सकता है। आए प्रभु ने वैसे ही नेत्रों में देख करके पूछा, कहो भूषुंडी नाटक तो तुमने भी सुना, सब ठीक तो है, उसी के अनुसार तो सब चल रहा है ना, मैं जो कर रहा हूं अभिनय सब ठीक लगता है? भूषुंडी ने भी वही बात कही जो शंकर जी ने कही थी, महाराज आप नाटक करें और कोई खोट हो? कहा, नहीं, पहले तो शंकर जी ने यही कहा, पर जब मैंने बारीकी से पूछा तो कहा कि महाराज और तो कोई कमी नहीं, पर ये जो झगुली आप पहने हुए हैं इसका रंग भर दूसरा है, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ऐसी कोई न्यूनता तो नहीं है? भूषुंडी जी ने कहा कि महाराज जब आप इतना ही पूछ रहे हैं तो झगुली को लेकर के ही अंतर है। क्या मतलब? झगुली और किसी दूसरे रंग की है, जब तुम आओगे, नाटक में ऐसा लिखा। कहा, नहीं महाराज, झगुली तो पीले रंग की ही होगी, पर पीत झीन झगुली तन सोई, माने यह जो झगुली होगी झीने कपड़े की होगी, यह अभी जो आपने झगुली पहनी है तो पीले रंग की पर कपड़ा मोटा है, पर नाटक में ऐसा लिखा है कि मैं जब आपके दर्शनों को आऊंगा तो ये जो झगली है वह पीले रंग की तो होगी पर झीने कपड़े की। क्या मतलब? महाराज ये जो मोटा कपड़ा है ना इससे आपके श्रीअंगों का जो सौंदर्य है वह ढक जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो यह जो झीना अगर कपड़ा हो तो उसके माध्यम से आपके नील अंगों का सौंदर्य कितना सुंदर दिखेगा। तो प्रभु ने हंस करके कहा अगर अंगों का सौंदर्य ही देखना है तो झगुली में उतारे देता हूं। कहा महाराज नहीं नहीं, यह उतरवाने का काम तो ज्ञानी करता है पर भक्त क्या चाहता है, झगुली रहे, आवरण बना रहे पर इतना मोटा भी ना हो कि भगवान का दिखना बंद हो जाए। यह जो पीले रंग की झगुली है यह पीताम्बर है, प्रभु पीताम्बरधारी है, श्री कृष्ण पीताम्बरधारी हैं, श्री राम पीताम्बरधारी हैं, पीताम्बर उनकी माया है। तो भक्त माया को स्वीकार करता है पर यह नहीं चाहता कि माया का पर्दा इतना मोटा हो जाए कि भगवान का दिखना ही बंद हो जाए।